भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध श्लोक क्रमांक 34। तत सभायामुपविष्टमुत्तमे नृपासने संवृत तेज संविभुम् अलक्षित द्वैरतम् अत्यमर्शनम् प्रचंड वक्त्रं नवभाज कश्चन तथा सभायां उपविष्टमुत्तमे नृपासने संवृत तेज संविभं अलक्षित द्वैरतम् अत्यमर्शनम् प्रचंड वक्त्रं नभभाज कश्चन तत सभायामुपविष्टमुत्तमे नृपासने संवृत तेज संविभुम् अलक्षित द्वैरथम् अत्यमर्शनम् प्रचंड वक्त्रं नभभाज कश्चन शब्दात् ततः तत्पश्चात् सभायां सभा भवन में उपविष्टम बैठे हुए उत्तमे श्रेष्ठ नृपासने सिंहासन पर जिस पर हिरण्यकशिपु बैठता था संवृत तेजसम पूर्ण तेजों में विभुम परमेश्वर को अलक्षित द्वैरथम जिनका प्रतिद्वंद्वी या शत्रु दिख नहीं रहा था अति अत्यंत अमर्शनम अपने क्रोध के कारण भयानक प्रचंड भयंकर वक्त्रम मुखमंडल न नहीं भवाज पूजे कश्चन कोई। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंहदेव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करें। तात्पर्य जब हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर भगवान बैठ गए तो किसी ने विरोध नहीं किया, यहां तक कि हिरण्यकश्यपु की ओर से कोई शत्रु भगवान से लड़ने नहीं आया। इसका अर्थ है कि असुरों ने भगवान की श्रेष्ठता तुरंत स्वीकार कर ली। दूसरी बात यह है कि यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान को अपना कट्टर शत्रु मानता था, किंतु वैकुंठ में वह उनका अत्यंत आज्ञाकारी दास था। अतएव हिरण्यकशिपु द्वारा इतने श्रम से प्राप्त किए गए सिंहासन पर भगवान बैठने से तनिक भी हिचके नहीं। इस प्रसंग में श्री भीष्माचार्य ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े संत तथा ऋषि वैदिक मंत्रों तथा तंत्रों के द्वारा भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं, किंतु तो भी भगवान उन आसनों पर नहीं विराजते, क्योंकि हिरण्यकशिपु पहले वैकुंठ द्वार का रक्षक जय के रूप में था और यद्यपि वह ब्राह्मणों के शाप से पतित होकर असुर बना था और यद्यपि हिरण्यकशिपु के रूप में उसने भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी, तो भी भगवान अपने भक्त तथा दास के प्रति इतने वत्सल थे कि उन्होंने हिरण्यकशिपु द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक आसन ग्रहण किया। इस प्रसंग में यह समझ लेना होगा कि भक्त अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रसंग में हिरण्यकशिपु जो इतने बड़े असुर हुए, उनका तो कभी गुणगान तो नहीं होता है, लेकिन यह श्लोक में वास्तव में देखा जाए तो यहां पर हिरण्यकशिपु का गुणगान हो रहा है। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार वास्तव में हिरण्यकशिपु वैकुंठ के द्वारपाल जय थे, और क्योंकि भगवान चाहते थे कि वह असुर बन जाए उनकी लीला में भाग लेने के लिए, इसलिए वो असुर बन गए। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर कुछ ड्रामा होता है तो उस ड्रामा में कोई जो विलन का रोल है वो लेने के लिए कोई इतना पसंद नहीं करता है, कभी सब हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन यहां पर भगवान अपने ही भक्त को कह रहे हैं कि ऐसे असुर का रोल करो, क्योंकि भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, तो इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि आप भौतिक दुनिया में जाकर एक असुर बन जाओ। देखिए, सोचने की बात है, इतना भक्ति करने के बाद वैकुंठ धाम पहुंच गए जो अत्यंत दुर्लभ है। अनेक अनेक जन्मों के बाद किसी को वो अवसर प्राप्त होता है वैकुंठ धाम जाने का। अभी वैकुंठ धाम में जाने के बाद भगवान उनसे कह रहे हैं कि जाओ भौतिक दुनिया में जाओ और असुर बन जाओ। कौन पसंद करेगा ऐसा रोल लेने का? लेकिन यहां पर क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे तो इसलिए वो तुरंत तैयार हो गए इस रोल निभाने के लिए और वे तुरंत असुर बन गए और अनंत काल के लिए उनका कोई गुणगान नहीं करने वाला है। सब कहेंगे ये बड़ा असुर था हिरण्यकशिपु जो सारे लोगों को इतना तकलीफ दिया, कोई गुणगान नहीं करता हिरण्यकशिपु। उनको पता था लेकिन फिर भी वो इस रोल लेने को तैयार हो गए। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रसंग में श्री भीष्माचार्य ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े संत तथा ऋषि वैदिक मंत्रों तथा तंत्रों के द्वारा भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं, किंतु तो भी भगवान उन आसनों पर नहीं विराजते। लेकिन चूंकि हिरण्यकश्यप पहले वैकुंठ द्वार का रक्षक जय के रूप में था, और यद्यपि वह ब्राह्मणों के शाप से पतित होकर असुर बना था, और यद्यपि हिरण्यकश्यप के रूप में उसने भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी, तो भी भगवान अपने भक्त तथा दास के प्रति इतने वत्सल थे कि उन्होंने हिरण्यकश्यप द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक आसन ग्रहण किया। जिस आसन पर हिरण्यकश्यप बैठते थे उसी आसन को भगवान स्वयं ग्रहण किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह मेरे भक्त का आसन है, मेरे शुद्ध भक्त का ही आसन है, और इसलिए उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक, नोपाज लिख रहे हैं, प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने उस आसन को ग्रहण कर लिया। और ऐसे बहुत सारे संत लोग, ऋषिगण होते हैं जो अनेक मंत्र तंत्र के साथ भगवान को आसन देते हैं, लेकिन हो सकता है भगवान उस आसन पर नहीं बैठते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है यहां पर समझने के लिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे श्रीवास आंगन में, तो हर रात को श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य पार्षदों के साथ बहुत धूमधाम के साथ संकीर्तन करते थे, लेकिन उस संकीर्तन में केवल उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनके नित्य पार्षद जो बहुत ही निकट थे उनके, केवल उनको उस संकीर्तन में भाग लेने की अनुमति थी और किसी को भी नहीं। हालांकि बहुत लोग चाहते थे उस बहुत सुंदर कीर्तन, महाप्रभु का नृत्य देखने की इच्छा करते थे, भक्तों से विनंती करते थे, लेकिन फिर भी भक्त लोग कभी भी किसी को अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परमात्मा है, तो अगर किसी को भी अनुमति देंगे तो भगवान तो तुरंत पहचान लेंगे, तो इसलिए किसी को अनुमति नहीं थी। लेकिन वहां पर एक ब्रह्मचारी था जो बहुत आतुर थे महाप्रभु के सुंदर कीर्तन नृत्य देखने के लिए, और उन्होंने श्रीवास ठाकुर को विनंती की, कृपया करके एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इस कीर्तन देखने के लिए अनुमति दीजिए। तो श्रीवास ठाकुर मना कर रहे थे, तो वो ब्रह्मचारी हर रोज आता था और हर रोज श्रीवास ठाकुर को वही विनती करते थे। वो ब्रह्मचारी बहुत ही शुद्ध था, बहुत तपस्या करते थे, केवल दूध और फल खाते थे रोज और कुछ भी नहीं। तो बहुत विनती करने के बाद एक दिन श्रीवास ठाकुर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आज आ जाना कीर्तन के समय, लेकिन आप चुप कर रहना, चुप कर आप देखिए कीर्तन। तो ब्रह्मचारी अंदर आ गया और श्रीवास ठाकुर ने खुद उनको एक ऐसी जगह पर छुपा दिया कि महाप्रभु को दिख न जाए, और फिर महाप्रभु कीर्तन करने से पहले ऐसे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि महाप्रभु खुद दरवाजा बंद कर देते हैं, और दरवाजा बंद करने के बाद फिर महाप्रभु कीर्तन शुरू करते हैं, और जब कीर्तन शुरू होता था तो नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य सब बहुत सुंदर तरीके से नृत्य करते थे, और सभी भक्त इस सुंदर कीर्तन में पूरी तरह से मग्न हो जाते थे। तो महाप्रभु तो परमात्मा है, वो जानते थे कि यहां पर यह ब्रह्मचारी है, लेकिन फिर भी कुछ समय तक कुछ नहीं बोले। कुछ समय के बाद महाप्रभु ने कहा कि आज मुझे इस कीर्तन में उतना आनंद नहीं आ रहा है जैसे हर रोज आता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है यहां पर जो नहीं होना चाहिए? तुरंत सत्य बताओ। तो यह सुनकर भक्तगण डर गए। तो खासकर श्रीवास ठाकुर बहुत डर गए और श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के सामने आकर कहने लगे, हे भगवान, यहां तो कोई नास्तिक नहीं है, यहां तो कोई असुर नहीं है। जय शिशुनाथ, यहां पर केवल एक ब्रह्मचारी है, वो भी एक ब्राह्मण है, बहुत तपस्वी है, केवल दूध और फल लेता है हर रोज, कोई पाप नहीं करता है, केवल यह ब्रह्मचारी है। यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, तुरंत निकाल दो यहां से, तुरंत। क्या कोई केवल दूध पीने से मेरा दर्शन कर सकता है? नहीं, केवल भक्ति द्वारा ही मेरा दर्शन होता है। तो श्रीमास ठाकुर उस ब्रह्मचारी को बाहर लाया। ब्रह्मचारी बहुत डर गया था और सोचने लगा, वास्तव में मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं कुछ समय के लिए महाप्रभु के सुंदर कीर्तन नृत्य को देख पाया। मैं कृतज्ञ हूं, और जो भी मैंने गलती की उसके लिए मुझे सही दंड प्राप्त हुआ। इस तरह सोचकर ब्रह्मचारी बाहर जाने लगा। उस समय महाप्रभु ने कहा, अपने हाथ उठाकर महाप्रभु ने कहा, सबको एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि वास्तव में भगवान को जानने के लिए किसी भी भौतिक योग्यता से नहीं हो सकता है। हनुमान जो केवल एक बंदर थे, क्या योग्यता थी? गजेंद्र केवल एक हाथी था। वृंदावन में जो गोपियां थीं, उनमें क्या योग्यता थी? लेकिन क्योंकि वो मेरे प्रति शरणागत थे तो इसलिए वो मुझे समझ पाए। केवल ऐसे तपस्या करने से भगवान को नहीं जाना सकता है। और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्रह्मचारी को वापस बुलाया और उनसे कहा, और पहले उन्होंने अपने चरण कमल उस ब्रह्मचारी के सर पर रख दिया और उनसे कहा, केवल शक्तिशाली बनने के लिए इस प्रकार का तपस्या मत करो, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति करने से जीवन की सफलता होगी। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्रह्मचारी को और सभी भक्तों को उपदेश दिया। इसलिए भगवान भगवद्गीता में उपदेश करते हैं कि ये जो सुंदर रूप है, वास्तव में ये जो रूप जो हम हर रोज दर्शन करते हैं, सुंदर यहां पर श्री श्री राधा राधिकरमन श्री श्री कृष्ण बलराम यहां पर विराजमान है और हर रोज हमें उनका दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन भगवान भगवद्गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं कि यह जो रूप है यह है सुदूरदर्शन। केवल दूरदर्शन नहीं, सुदूरदर्शन मत अत्यंत ही दुर्लभ है इस रूप को देखना। जो देव देवताएं हैं उनको भी यह दर्शन पाना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए भगवान कहते हैं न वेदेश न दाने न तपस्या न चेजय। केवल वेद पढ़ने से, केवल दान देने से, या केवल तपस्या करने से, या केवल आराधना करने से यह दर्शन प्राप्त नहीं होता है। भक्तिया अथवा अनन्या शक्या, भगवान कहते हैं एक ही तरीका है, वह है भक्ति। केवल भक्ति द्वारा ही इस रूप का हम दर्शन कर सकते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है, तो हम तो रोज दर्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या योग्यता है कि हम रोज दर्शन कर पा रहे हैं। यह वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी और पूर्व आचार्यों की अनंत असीम कृपा है कि हमें वही रूप जो इतना दुर्लभ है उस रूप का दर्शन हो रहा है। यह केवल श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है। क्योंकि हमें थोड़ी सी श्रद्धा है और उस श्रद्धा के साथ हम इस भक्ति पथ को अपनाएं, तो इसलिए उनकी कृपा से हमें रोज यह दर्शन प्राप्त हो रहा है। और अभी यह हम पर निर्भर है कि हम किस कितने श्रद्धा के साथ यह दर्शन करते हैं। हम दर्शन कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या पता ये तो एक केवल मूर्ति है, क्या सचमुच भगवान है, हम सोच सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्च विग्रह और भगवान ये दोनों अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं तभी वास्तविकता में हमें वो साक्षात्कार प्राप्त होगी। तो इसलिए भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी को कहते हैं नहीं अंगोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धुणानपि मया व्यवसितः सम्यन् निर्गुणत्वात् अनाशिषः। भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि मेरे प्रिय उद्धव, मैंने स्वयं इस भक्ति पथ को दिया है। यह भक्ति जो है यह कैसा है, निर्गुणत्वात्। निर्गुणत्वात् का मतलब है कि तीन गुण से प्रभावित नहीं है, ये दिव्य है। और मुख्य गुण क्या होना चाहिए, अनाशिष्य। अनाशिष्य का मतलब है बिना कुछ भौतिक हेतु के साथ। और भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार का भक्ति अगर कोई भक्त करता है तो फिर इस प्रकार का भक्ति में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में लिखते हैं, इस प्रसंग में यह समझ लेना होगा कि भक्त अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है। भक्त हमेशा किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है। यहां पर जय जो शुद्ध भक्त है यहां पर असुर बन गए, लेकिन फिर भी वह भाग्यशाली है, क्योंकि यहां पर भगवान स्वयं उसी आसन पर बैठते हैं जिस आसन पर हिरण्यकश्यप। तो जब भक्त भक्ति करता है, इस प्रकार शुद्ध भक्ति करता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। लेकिन वो भक्ति का गुण क्या होना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम। इस प्रकार का भक्ति जिसमें कुछ भौतिक हेतु नहीं है, जिसमें कुछ रुकावट नहीं होता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुकि अप्रतिहता। इस प्रकार का भक्ति करने से कभी कभी भी भक्त को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। एक बार एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि हम ये भक्ति कर रहे हैं, इतने सारे नियम इत्यादि पालन कर रहे हैं, और क्या अगर जीवन भर ये भक्ति करने के बाद अगर समझो कि यह पता चलता है कि वास्तविकता में कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो प्रभु जी कहते हैं, लेकिन फिर भी क्या नुकसान है, अगर समझो कि अगर जीवन भर भक्ति करने के बाद यह समझ में आता है कि भगवान नहीं है, फिर भी क्या नुकसान है, वास्तव में क्या किया है, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग, तो एक बहुत अच्छा जीवन जिया है, तो इसमें क्या नुकसान है। तो वास्तव में तो हम समझते हैं कि ये सत्य बात नहीं है, लेकिन अगर हम कल्पना भी करते हैं तो भी क्या नुकसान है, शुद्ध जीवन जिया है, प्रसाद लिया है, क्या नुकसान है। जब श्रील प्रभुपाद जी यहां पर वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, तो वहां पर प्रातःकाल हर रोज एक बूढ़ी स्त्री एक मटका पानी यमुना से हर रोज लाती थी, और उस मटके पानी को अल्टर के सामने रखकर चली जाती थी, और श्रील प्रभुपाद जी हर रोज देखते थे अपने कमरे से। कोई उस समय पुजारी भी अंदर ड्रेसिंग करते रहते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता कि किसने पानी लाया है। लेकिन बाद में जब पुजारी को अभिषेक करना होता था, तो पुजारी उस पानी को लेकर अंदर लेकर जाते थे। हर रोज बूढ़ी स्त्री थी, बहुत कठिनाई के साथ यमुना जल को लेकर भगवान के सामने रहते। गर्मी हो या बारिश हो या ठंडी, हर परिस्थिति में वो सेवा करते, और श्रील प्रभुपाद जी हर रोज देखते थे। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद जी ने बाकी भक्तों से कहा, यह स्त्री जो है जरूर भगवत धाम जाएगी। क्यों, कौन सी बड़ी सेवा की, ऐसा नहीं कि बहुत प्रचार कर रही थी, ऐसा नहीं कि सैकड़ों भक्तों बनाए, ऐसा नहीं कि कुछ बड़े बड़े मंदिर बांध लिया, कुछ भी नहीं, केवल रोज एक मटका पानी यमुना से लाकर भगवान के सामने। इस ब्रह्मचारी की कथा से भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यही उपदेश दे रहे हैं। कोई बड़ा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्य बात क्या है, अहेतु की अप्रतिहता। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं, अहेतु की और अप्रतिहता, कुछ रुकावट नहीं उस सेवा में। इस भावना के साथ जब हम सेवा करते हैं तो उस सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्ति में मुख्य बात क्या है कि हमारी भावना क्या है, किस हेतु के साथ हम वो सेवा कर रहे हैं। क्या हम स्वयं की प्रसन्नता के लिए, या मान प्रतिष्ठा के लिए, या किस हेतु के साथ वो सेवा कर रहे हैं, या केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। कोई भी सेवा क्यों ना हो, छोटा सेवा हो, बड़ा सेवा क्यों भी, कोई भी सेवा क्यों, मुख्य बात यह है कि हेतु क्या है। और वही बात भगवान उद्धव जी को भी कह रहे हैं, अनाशिषः, इसका मतलब यह है कि बिना कुछ भौतिक हेतु के साथ। जब इस प्रकार भक्ति किया जाता है तो भगवान कह रहे हैं, तो इस प्रकार भक्ति करने से कभी भी भक्त के जीवन में कुछ भी नुकसान नहीं है। हम देखते हैं इसी प्रकार चित्रकेतु महाराज, जो शंकरसन के शुद्ध भक्त बन चुके थे, छोटी सी भूल के लिए माता पार्वती ने उनको शाप दिया इस धरती पर असुर बनने के लिए, और तुरंत वे वृत्रासुर बन गए। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा विशाल शरीर। अभी कोई सोच सकता है कि अभी तो इसका जीवन बर्बाद हो गया, ये तो असुर बन गया, क्या लाभ है, इतना भक्ति करने के बाद असुर बन गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब वृत्रासुर इंद्र के साथ लड़ाई कर रहे थे और लंबा कथा है, लेकिन संक्षेप में, उस लड़ाई में जब इंद्रदेव गदा से वृत्रासुर पर प्रहार करते हैं और वृत्रासुर बहुत आसानी से उस गधा को पकड़ लेते हैं और उसी गधा के साथ ऐरावत को मारते हैं और ऐरावत इंद्र के साथ कई दूर गिर जाते हैं और फिर से वृत्रासुर इंद्र को कह रहे हैं कि लड़ाई मत छोड़ो। ठीक है, अभी गधा तो गिर गया, लेकिन वज्र को उठाओ और वज्र से प्रहार करो। लेकिन इंद्र सोच रहे थे, अभी गदा तो गिर गया तो वज्र से प्रहार करूं तो वज्र भी वही हो जाएगा, तो वज्र से प्रहार करने का भी क्या लाभ। लेकिन वृत्रासुर कह रहे थे कि यह वज्र साधारण वज्र नहीं है, ये तो विष्णु के आदेश के अनुसार ये वज्र बनाया गया है, तो इसलिए जरूर इस वज्र से प्रहार करने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। वृत्रासुर इंद्रदेव को आश्वासन दे रहे थे। तो देखिए, तो वृत्रासुर हालांकि असुर थे, असुर के शरीर में थे, लेकिन उनकी चेतना अभी भी पूरी तरह से शुद्ध थी और अभी भी उनकी चेतना पूरी तरह से भगवान के ऊपर विश्वास था और हालांकि इंद्र देवता थे लेकिन फिर भी उनको शंका थी कि क्या ये वज्र काम करने वाला या नहीं। तो देखिए असलियत में कौन विजय हुआ, वृत्रासुर या इंद्र? तो वृत्रासुर को पूरी तरह से विश्वास था कि इस वज्र के द्वारा मैं पुनः भगवत धाम चला जाऊंगा। और हालांकि इंद्र जीतने वाले थे लेकिन फिर भी क्या लाभ, फिर से इस भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु का चक्कर। तो इस तरह भक्त का जीवन जो है वो कभी भी नुकसान नहीं होता है। हर परिस्थिति में अगर विश्वास है भगवान के ऊपर, श्रद्धा है, तो हर परिस्थिति में भक्त का विजय ही होता है, कभी नुकसान नहीं। केवल विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा के साथ जब हम पूरी तरह से भगवान और उनके भक्तों के दिए हुए आदेश पर विश्वास रखकर अगर हम सेवा करते हैं तो जरूर विजय प्राप्त। उसी प्रकार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में पूरी तरह से विश्वास था अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर। हालांकि पहले भारत में प्रभुपाद जी ने प्रयास किया प्रचार करने का, कुछ सफलता प्राप्त नहीं। जब विदेश गए, ऐसा नहीं कि शुरुआत में से ही बहुत सारे भक्त आने लगे, नहीं, एक डेढ़ साल तो कुछ सफलता नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी को पूरी तरह से विश्वास अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर और प्रयास करते रहे। और फिर हम देख सकते हैं किस प्रकार भगवान उनकी मदद करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य में भी उसी प्रकार का विश्वास के साथ उन्होंने प्रयास किया। जैसे कि हम देखते हैं कि आज दिल्ली में इतने सारे भक्त हैं लेकिन इस प्रचार का शुरुआत कैसे हुआ? जब कुछ प्रभुपाद जी कुछ भक्तगण के साथ ट्रेन में जा रहे थे, अमृतसर से शायद मायपुर जा रहे थे, और दिल्ली स्टेशन पर किसी लाइफ मेंबर वहां पर आ गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी अच्छा होता कि दिल्ली में भी आपका कुछ केंद्र होता तो अच्छा होता। और तुरंत प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों की ओर मुड़कर गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी और कुछ और शिष्य थे, उनसे कहा चलो उतर जाओ यहां पर। अभी उनको पता नहीं था कि कहां रुकने वाले, प्रसाद कहां से मिलने वाला, कुछ पता नहीं था। और प्रभुपाद जी कह रहे उतर जाओ। अभी एक प्रश्न भी न पूछे तुरंत अपना सामान पैक कर लिया, उतर गए। उन्होंने ऐसा नहीं पूछा प्रभुपाद जी हम कहां रहेंगे, प्रसाद कहां से मिलने वाला है, कुछ प्रश्न नहीं किए, बस उतर गए। इसको कहते हैं विश्वास, श्रद्धा, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने जब जय थे उन्होंने प्रश्न नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, मैं असुर बन जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, निंदा करेंगे, क्या होगा, कुछ प्रश्न नहीं किया उन्होंने। असुर बन जाओ, असुर बन गए। उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, उतर जाओ ट्रेन से, उतर गए, एक प्रश्न भी नहीं। उसका फल स्वरूप हम देख सकते हैं कि यहां पर अभी दिल्ली में कितना सारा प्रचार हो रहा है, क्योंकि कुछ भक्तों ने पूरी तरह से प्रभुपाद जी के प्रति शरणागत होकर उनके आदेश को पालन करने के लिए तैयार हुए। उसी प्रकार आज श्री लोकनाथ गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है। श्री लोकनाथ गोस्वामी पद्मनाभ भट्टाचार्य और सीता देवी के पुत्र थे। उनका जन्म ईस्ट बंगाल के जेसोर डिस्ट्रिक्ट में तालाकारी नाम का एक गांव में हुआ और बहुत कम उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, जाओ वृंदावन जाओ। और वहां पर जो भगवान के लीला स्थली हैं उनको फिर से विकसित करो। और उसी प्रकार तुरंत लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन के लिए निकल पड़े। और वृंदावन में रहने लगे और उस सेवा में सेवा करने लगे वहां पर। बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए तो लोकनाथ गोस्वामी को बहुत इच्छा हुई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को इस संन्यास रूप में देखने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन से निकल पड़े और तभी उनको पता चला कि महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर गए। तो लोकनाथ गोस्वामी दक्षिण भारत गए। जब दक्षिण भारत पहुंचे तो समाचार मिल गया कि महाप्रभु फिर से पुरी गए। तो लोकनाथ गोस्वामी फिर से दक्षिण भारत से पुरी आए। जब पुरी आए तो उनको पता चला कि महाप्रभु वृंदावन गए। तो वृंदावन आए और सोच समझने की बात है, उस समय न तो इंडियन रेलवे था न इंडियन एयरलाइंस, पैदल जा रहे थे। और फिर वृंदावन पहुंच गए तो पता चला कि महाप्रभु वृंदावन छोड़कर फिर से चले गए। तो लोकनाथ गोस्वामी हैरान हो गए। तो उस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर उनसे कहा कि हे लोकनाथ, आप इस प्रकार का प्रयास मत कीजिए, ये तो केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि तुम मेरे सन्यास रूप को नहीं देख पाएंगे, अब बहुत शोक करोगे, तो इसलिए अच्छा है कि आप इस सन्यास रूप को न देखें, तो इसलिए वृंदावन में रहो और अपनी सेवा करो। और महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि जब नरोत्तम यहां पर आएंगे, वृंदावन पहुंचेंगे, तो उनको दीक्षा देना। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सालों के बाद जब वृंदावन पहुंचते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को भी आदेश देते हैं कि जब आप वृंदावन जाओगे तो वहां पर लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना। तो इसलिए वहां पर लोकनाथ गोस्वामी के पास जाकर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जीवन में गुरु के बिना कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मेरे जीवन में एक भी शिष्य नहीं लूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जिद करते हैं कि नहीं, आपसे ही दीक्षा लेना है, महाप्रभु का आदेश है। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, एक साल बाद देखेंगे। और उस समय नरोत्तम दास ठाकुर, हालांकि वो एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन फिर भी हर रोज बहुत ही नम्र सेवा करते थे। हर रोज जहां पर लोकनाथ गोस्वामी मलमूत्र त्याग करते थे उस जगह को साफ करते थे। और लोकनाथ गोस्वामी आश्चर्य होते थे कि यह जगह कौन साफ कर रहा है रोज। तो एक दिन छुपकर से देखते हैं और देखते हैं कि नरोत्तम साफ कर रहा है। और इस विनम्र सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं लोकनाथ गोस्वामी। और फिर एक साल के बाद भी लोकनाथ गोस्वामी तैयार नहीं होते दीक्षा देने के लिए। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर फिर से जाते हैं लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं होते हैं। और फिर एक दिन महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और डांटते हैं, कहते हैं कि मैंने आपको आज्ञा दी थी लोग नरोत्तम को दीक्षा देने के लिए, क्यों नहीं दे रहे हो? इस झूठी नम्रता को छोड़ दो। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा देते हैं। लोकनाथ गोस्वामी की बहुत इच्छा होती है किसी विग्रह की सेवा करने का, और स्वयं भगवान उनको प्रकट होते हैं राधा विनोद के रूप में और उनके लिए सुंदर मंदिर बनाते हैं। गोपनानंद मंदिर जो है लोकनाथ गोस्वामी बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के लिए इस प्रकार सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। और हर रोज हम गाते हैं गुरु पूजा में लोकेनाथ लोकेर जीवाना, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। तो इस प्रकार यह शुद्ध भक्ति, जब हम केवल भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए, जब हम कोई भी सेवा करने के लिए तैयार होते हैं बिना कुछ भौतिक हेतु के साथ, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहां पर भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिप का सिंहासन ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि वे उनके शुद्ध भक्त थे। तो हालांकि बहुत ऋषिगण और संत लोग या साधु लोगों का आसन भगवान इतना आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिप का आसन भगवान स्वीकार करते हैं क्योंकि वह शुद्ध भक्त थे। असुर बनने के लिए तैयार हो गए इस भौतिक दुनिया में, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। केवल भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए कोई भी सेवा करने के लिए जब हम तैयार होते हैं तभी भगवान उस भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।